Amén. जो विशेषज्ञ होता है, विशेष रूप से उसको जानता है और दूसरों को सिखला सकता है, तो लोग उसे क्या कहते हैं? स्पेशलिस्ट कहते हैं, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। मास्टर अधिक तरह से लोग जाते हैं, टीचर कहेंगे, प्रोफेसर कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। किंतु जो संसार के समस्त विषयों से श्रेष्ठ विषय है, जिससे और कोई चीज बड़ी नहीं है, उस विषय में गुरुतर विषय को गु कहा गया। हमारी आंखें रहने पर भी बहुत से जीवन की ऐसी चीजें हैं जिसकी गुलथी हम नहीं सुलझा सकते। विशेष करके हमारा हित किस में है, हमारी भलाई किस में है, हमें सुख और आनंद किस विषय में मिल सकता है, यह बहुत ही विषय गुरुतर है। बचपन से सभी को ये शिक्षा दी जाती है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं। और इससे भी गुरुतर विषय है, यह सुख भोगने वाला कौन है। ये सुख भोगने वाला जो ये कौन है और किस तरह से हम जीवन में दुख रहित सुखी हो सकते हैं, तो इस विषय को जो स्पष्ट रूप से जानता है, निर्भोल रूप में जानता है और दूसरों को भी इसके लिए परामर्श और दिग्दर्शन कर सकता है, ऐसा गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति गुरु कहलाता है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। हम जिस विषय में अंधकार में हैं, उस विषय में वो दिव्य ज्ञान को, प्रकाश को देने वाला है, इसलिए उसका नाम गुरु है। इससे विषय संसार में कोई गुरुतर बढ़कर नहीं है। हम यह जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा यदि हम लाभ कर सकें और किसी प्रकार से धन कमा सकें और इस विषय में हमारी जो हेल्प करे, विषय में ज्ञान अर्जन कराए, वो हमारा गुरु है। किंतु यह संपूर्ण अंधकार है। क्यों हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा का अवलंबन कर प्रचुर रूप में अर्थ कमाने वाला व्यक्ति भी सुखी नहीं है, अधिकांश लोग सुखी नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि एक कुरूप व्यक्ति, दो मिनट का समय हमें दें तो मैं आनंदित होऊंगा, क्योंकि हम लोग फॉर्म में आए हैं और आप लोग अब अपना दिमाग किसी मैनेजमेंट में मत दीजिए, विशेष करके आपके लिए कह रहा हूं, गृहकर्ता के लिए। आप सब समय व्यस्त रहते हैं, जानता हूं, कार चलाने में भी व्यस्त रहते हैं, उस समय में संसार के लोगों से उससे बातचीत करते हैं, कहां कहां से जापान और अमेरिका और इधर उधर देश विदेश में। अब ये 5 मिनट का समय हमको दे दीजिए, छोड़ दीजिए, हमको किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप में, प्राकृतिक रूप में उनको होने दीजिए। यदि हमें 2 मिनट का समय देंगे तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो आधुनिक लोगों का विचार है, भाई बातचीत मत करो कोई, अब आने तो पहले आप लोग व्यवस्था कर लीजिए, तब मैं कुछ बोल, यही बात ठीक है। मार्गदर्शन करेगी। आप लोग जिस जीवन में है, इस जीवन को मैं भोग चुका हूँ, जानता हूँ, वाकिफ हूँ इससे। इसमें सुख शांति नहीं है। जिस चीज में सुख शांति हमने देखा, अनुभव किया, उपलब्धि की, केवल पढ़ करके नहीं, उपलब्धि की, और हमारे लाखों महापुरुषों से लेकर इस विषय में सुखी हैं। इसमें दो ही एक बातें हम बतलाएंगे। अभी तक कीर्तन होगा, कीर्तन के माध्यम से दो चार हम उसमें बतलाएंगे। पहले गुरु तत्व के ऊपर में बतला रहे थे, हमसे अधिक जो जानते हैं, हमारा मार्ग जीवन का दर्शन करा सकते हैं, और जिसमें हम सुखी और शांति रह सकते हैं, वो भी टेम्पररी नहीं, स्थायी रूप से जिसमें हम सुखी और शांति हो सकते हैं, दुख भी दूर हो सकते हैं, अंधकार दूर होकर के प्रकाश जो दे सकता है, उसका नाम है आजकल गुरु नाम से ही। आज के कथित सभ्य समाज और लिटरेट समाज में कुछ सांप्रदायिकता का बू आने लगता है आजकल। गुरु नहीं कहेंगे, मास्टर कहेंगे, टीचर कहेंगे, शिक्षक कह सकते हैं, किंतु गुरु कहने से ही हो जाए, यो ये तो व्याख्यानुषी सांप्रदायिक विचारधारा है, किंतु बात ऐसी नहीं है। तो वो दिव्य ज्ञान क्या है, हम बैठे हैं यहां, हम नहीं जानते हैं कि एक मिनट में हृदय की धड़कन बंद हो जाने पर न जाने शरीर से कौन सा चीज निकल जाएगा, तो हम बैठे धरे रह जाएंगे ये सब शरीर की सारी चीजों को लेकर के, किंतु शरीर का स्पंदन बंद हो जाएगा, सुख पाने की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा भी दूर हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं, इसका कुछ भी मूल्य नहीं रह जाएगा। वो चीज निकल करके जाता है, वो क्या चीज है, वही सुख चाहता है, वही दुख नहीं चाहता है। जो लोग इस चीज को छोड़कर भौतिक सुख समृद्धि के लिए जोर देते हैं, इस शरीर के लिए, आज तक इसको कोई बचा नहीं सका, इसको सुखी नहीं कर सका। मैं नहीं जानता हूं कि जो जितने धनी से धनी और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं सब प्रकार के सुख भोगों से, उन लोगों को कोई कामना नहीं है और वो लोग सुखी हैं सब प्रकार से, मैं नहीं जानता। मैं तो समझता कि वही सबसे दुखी होंगे। इसलिए जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर हमारे आत्म तत्व का बतला सकता है, और जो ही वो प्रकाश आया तो ही ये मालूम हो जाएगा कि ये सब संसार सुखमय नहीं है। कैसे सुख पाया जा सकता है, वो दिग्दर्शन कर सकता है, जन्म जन्मांतरों का उसका दुख दूर हो जाएगा, वह सुखी हो जाएगा। इस कला में जो निपुण है और इस कला में जो प्रतिष्ठित हमें कर सकते हैं, उनका नाम। अब आगे हम लोग कुछ कीर्तन करेंगे। आप एक कीर्तन ऐसा सुंदर मजा करके कर, सुख की जितनी सामग्रियां हो सकती थी सारे उपकरण उनके घर में थे, इसलिए उनको राजा कहा जा सकता है। रानी भी बड़ी सुंदरी थी, बड़ी लिखी शिक्षित थी, बड़ी उदार थी। राजा भी वैसे बहुत ही ठीक थे। एक समय कोई साधारण से जैसे लगने वाले कोई साधु संत व्यक्ति लंगोटी नहीं पहने थे, मस्तक मुंडन था जैसा हम लोगों का रहता है, लाल कपड़े थे साधारण, हाथ में जैसे हमारा दंड होता है वैसा दंड था, हाथों में राम नाम की झोली थी। उनके घर पर पधारे, बोले जी मैं राजा से मैं भेंट करना चाहता हूं। राजा के पास में व्यक्ति गया पूछने के लिए, दरबान कोई एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, तिलक है, मस्तक मुंडन है, हरिनाम की झोली है, तो वो जरूर कुछ चाहता होगा। राजा ने कहा इसलिए वो आया है, कुछ कर्फ जरूर चाहिए उसको। कहा तो जो आज नहीं मुझे समय है, 5-6 दिन के बाद में आए। वो गया उसे बतलाया, वो चला गया। 5-6 दिन के बाद में फिर आया, फिर खबर दिया जी उसे वही शादी जो मिलना चाहता था आपसे वो मिलना चाहता, आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे फुर्सत नहीं है। कह दो ये 2 दिन के बाद में, फिर उसको लौटा दिया। इस तरह 2-3 बार उसको लौटा दिया। फिर वो आया, फिर उनसे जब भेंट नहीं है तो वो चला गया दूसरे दरवाजे पर, दरवाजे पर उनकी पत्नी के पास में। उन्होंने कहा जी जाकर के कह दो ये कोई संत मिलने के लिए आए हैं, उनसे कह दो। जाकर के कह दिया तो वो तो बड़ी उदार हृदय की, सोचा जी कुछ आए हैं उन्हें मांगने तो उनको दे दूंगी। तो वो भीतर में गया, बड़े आदर के साथ में बैठ गए। कहिए महात्मा जी कैसे पधारे, आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा जी मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, मैं तो एक आप लोगों के भलाई के लिए आया था, किंतु मैं 4-5 दिनों से या 7 दिनों से, आज हो गया 15 दिन, राजा से मिलना चाहता था किंतु नहीं मिल सका, एक विशेष आवश्यक उन्हीं के लिए था, क्या कहिए आप। कहा जी देखो मैं ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही मर्मज्ञ हूं और मैंने देखा जी बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं, इनकी कुछ सहायता करनी चाहिए, इसलिए मैं आया था जी इनको कुछ बतलाऊं। मैं ये देखा कि जिसे अब ये 15 दिन और जीवित रहने वाले हैं, मैंने गणना शास्त्र करके देखा, ज्योतिष विषय में मैं बहुत ही विशेषज्ञ हूं, ये 15 दिन के अंदर में ये मरेंगे, यही मैं आज 1 महीने से मैं सोच रहा था, किंतु मुझे समय नहीं मिला जो इनको बतलाऊं। और मैं आपको गारंटी के साथ में ये बतलाता हूं ये 15 दिन के अंदर में जरूर मरेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग तो जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो भारतीय संस्कृति से परिचित होंगे, परीक्षित महाराज को एक छोटे से बच्चे ने अभिसंपात दिया जो 7वें दिन तुमको सांप कटेगा और जरूर तुम मरेगा, वो बात हुई। यदि हम ठीक ठीक गणना करें, गणना के साथ साथ में आज से 50-100 सैकड़ों वर्ष जो भविष्य में आने वाला सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण और सब जो चीजें हैं वो ठीक निकलती हैं। इस तरह से ये ज्योतिष भी एक गणना है, जिसकी गणना निखुत होगी ठीक होगी तो वो जरूर ठीक होगा। तो मैं ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि ये जरूर मरेंगे, इसलिए इनको जो कुछ करना है कर लें। और ये कहते ही रानी घबरा गई, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एकदम घबरा गई। और इतने में ये महाशय जी चल दिए निकल करके, ये अपना जो कुछ करना है तैयारी कर लो, जो कुछ करना है। ए बच्चा इधर आओ, ए इधर इधर चले गए। और रानी ने उसी समय में तत्क्षणा राजसभा में एक आदमी को भेजा, अपनी प्रिय सहेली को भेज दिया, जाओ राजा महाराज जी को यहीं पे बुलाओ, जो कि उस संत को 5-10 बार फिर लौट आया। अपनी रानी का हुक्म आते ही बस 1 सेकेंड नहीं लगी, एकदम जल्दी से दौड़ करके आ गए। किसलिए हमको जल्दी से बुलाया, बुलाया तो इसलिए कि एक संत बहुत दिनों से आपसे भेंट करना चाहते थे, आपने भेंट नहीं किया। वो बहुत उच्च कोटि के ज्योतिष जानने वाले थे, मर्मज्ञ, आपने अवहेला की, तो इसलिए आए थे बतलाने के लिए। जैसे आप 15 दिन के बाद में जरूर मरना है, किसी तरह से आप वही रोक नहीं सकते, और यदि कहिए तो हम आपके पास ही रहेंगे, यदि मैं झूठ बोल करके जाऊं, इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए आप परीक्षा के लिए देखिए। राजा तो बहुत घबरा गए, उन्होंने कहा जी भाई उसको जहां से यहां से खोज करके निकालना चाहिए, इसलिए खोजने के लिए आदमियों को भेज दिया। थोड़ी देर के बाद में उनको लेकर के साथ में आया। अब महाराज अपने आप उठ करके खड़े हो गए, अभिवादन करके अपने स्थल पर उनको बैठाया। कहे महाराज जी किस लिए हमको आपको? नहीं बेटा, मैं किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमको जरूरत नहीं थी, मैं तो अपने में पूर्ण हूँ, हमको कोई चीज की जरूरत नहीं, बस इसलिए। देखा जी तुम भले आदमी हो, और मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था, ऐसे में हमने देखा कि ये तुम 15 दिन के बाद में तुम जरूरत मर जाए, तो मैं तो 1 महीना पहले ही से ही आया था, 15 दिन और पहले, किंतु आपने सुयोग नहीं दिया, ये तो रानी जी को मैंने बतला दिया। आपको जो कुछ करना है आप संभाल लीजिए और कर लीजिए, जो कुछ जीवन में आप करना चाहते हैं कर लीजिए। महाराज ने कहा मैं क्या करूं, आप ही बतलाइए मुझको क्या करना चाहिए। नहीं तुम समझो, तुमने अपने जीवन में, तुम प्रौढ़ हो, 50 वर्ष के हो, बहुत बुद्धिमान हो, अब तुम सोचो जो तुमको क्या करना चाहिए। अजी मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे मैं क्या करूं। अच्छा एक बात कीजिए, मैं देख रहा हूं कि आपके कर्म बड़े अच्छे हैं, अच्छे कर्म किए हैं, किंतु कर्म तो किए अच्छे, किंतु इसमें कुछ गड़बड़ी भी हुई है, कुछ आपने दोष त्रुटियां भी की हैं इस जीवन में, तो आप एक बात कीजिए, आपको मैं जानता हूं कि स्वर्ग मिलेगा आपके जितने अच्छे काम हैं, किंतु आजकल स्वर्ग में कुछ मच्छर भी हो गए हैं, और मच्छर बड़े भयानक काले काले हैं, वो एक बार काटने के बाद में वो मलेरिया बुखार हो जाएगा, उससे बचना बड़ा भारी मुश्किल है, वहां पर मच्छरदानी भी मिलेगी पक्की, किंतु उसका एक कोना जो आपको मुसारी जो अलॉट की जाएगी उसके एक कोने में थोड़ा सा छेद है, उसमें से मच्छर आ जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब चीजें आपके जीवन की सुख सुविधाएं वहां पर ऐसे मिलेंगी जो इस जीवन में आप कभी भोगा नहीं, कभी कल्पना नहीं कर सकते, किंतु एक सुई और थोड़ा सा धागा यहां से लेते जाए। भजे ये सुझाव धागा मैं कैसे ले जा सकता हूं? सुई धागा नहीं ले जा सकते, तो नहीं तो, तो आपने वृथा ये 50 वर्ष यू ही बगावा दिया, ऐसे कोई भी काम नहीं कर सके जो इस जगत की कोई एक सुई और धागा भी नहीं ले जा सकते। सुई नहीं रहने दीजिए वहां पर, हम मैं व्यवस्था करा दूंगा, केवल धागा थोड़ा सा ले जाइए, धागा भी नहीं ले जा सकते, तो नहीं तो आपने जीवन में क्या किया, एक धागा भी नहीं जीवन का ले जा सकते। ऐसे ही हमारी स्थिति है, आप लोग में से कोई हाथ उठाइए यहां का धागा भी हम साथ में लेकर के जाएंगे, धागा की तो बात क्या, ये शरीर भी लेकर के जाएंगे। अभी मैं विदेश में गया, हमारे साथ में एक सोमनाथ जी हैं, वो भी गए थे इंग्लैंड में, वहां के बहुत बड़े भारी टॉप के बिजनेसमैन, उनके कितने करोड़ों डॉलर्स थे एक दो दिन की आमदनी, उनसे बातों में ये बात हुई, सुन रहा है ना, ये पूछूंगा, तो डॉलर की आमदनी, उसे कहा जाए अच्छा ये बतलाइए यदि हठात हार्ट फेल आपका आज हो जाए तो ये सब चीजें के लिए क्या व्यवस्था किया है आपने? बस एकदम सिर पर हाथ रख दिया, मैंने कभी जीवन में ये सोचा ही नहीं जो ये चीजों को छोड़ करके जाना पड़ेगा और इसका कुछ भी उपयोग मैं नहीं कर सकूंगा मरने के बाद। तात्पर्य ये है कि हम लोग इस पर कभी उलट करके विचार नहीं करते, जीवन में हम कैसे सुखी रह सकते हैं, आखिर जो कुछ करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं, किंतु कैसे यथार्थ में हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं इस पर विचार नहीं करते। अभी अंश वर्षों की बात है, अभी हमारे देश में आप लोगों ने अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का नाम सुना होगा। लास्ट मुगल पीरियड का जो राजा था वो औरंगजेब था। तो उसी के अकबर के जमाने में ही, जब हुमायूं का राज्य था उसके बाद में अकबर आए, उस समय किसी प्रकार से हुमायूं बच गया था। फतेहपुर सीकरी का युद्ध हो चुका था, महाराणा संग्राम किसी प्रकार से उस युद्ध में हार गए और भारत का एकदम भाग्य विधाता एकदम उलट गया उसी युद्ध में। तो उसी समय में सारे भारतवर्ष में मुगलों का साम्राज्य हुआ था। उसमें हुसैन शाह बादशाह सम्राट थे और उनके राज्य में जो सेनापति बने, प्रधान मंत्री जो थे, उनका नाम था सनातन। बहुत ही बुद्धिमान, विलक्षण बुद्धि के, सारा राज्य का कंट्रोल वो करते थे। ऐतिहासिक आप लोगों को सत्य चीज बतला रहा हूं, पौराणिक नहीं।
दिल्ली में राज्य उसमें हुमायूं का था।
उस समय हुमायूं का राज्य था। हुमायूं के बाद में अकबर बैठने वाला था। चैतन्य महाप्रभु हुमायूं के बाद में और अकबर के समय में थे, और सनातन गोस्वामी इत्यादि सब, वल्लभाचार्य और उसमें तुलसीदास जी, ये सब उस समय के ये सब लोग हैं। उसमें बड़ी सारे देश में एक क्रांति चल रही थी, धार्मिक क्रांति, सब उसी समय के आसपास, सब उसी के साथ में। तो उस समय में चैतन्य महाप्रभु जी किसी प्रकार से वहां पर उनके राजधानी में पहुंचे थे, उनसे भेंट हुई, और भेंट होने के साथ ही साथ में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रेरणा उनके अंदर में आई, कुछ वैराग्य संसार से हो गया। उन्होंने सोचा जीवन क्या है, जीवन की पहली समझना और समझाना बड़ा भारी कठिन है। कुछ लोग जिसको सुख कहते हैं वही दूसरों के लिए दुख है। बीफ किसी लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन और किसी के लिए नाम सुनते ही अपवित्र बन जाता है। अभी कल हम लोग आ रहे थे, रास्ते में देखा जिसे शराब पी करके और बच गया थोड़ी सी देर के लिए, नहीं तो एक ट्रक में वो दब जाता और मरी जाता। कुछ लोगों ने उसको उठाकर कर उसी में वो सुख समझता है, और कुछ लोग उसको घृणा करते हैं। तो वो बहुत ही विलक्षण बुद्धि के थे। महाप्रभु जी से भेंट होते ही उन्होंने रियलिटी इसकी समझी, ये जीवन क्या है। घर छोड़ दिया, यहां तक कि जिसमें उन्होंने पद छोड़ा उसमें बादशाह उन पर बहुत असंतुष्ट हो गया, उनको जेल में बंद कर दिया। किसी प्रकार से बड़ी चतुराई से जेल से निकल करके वृंदावन की तरफ में आ रहे थे। उनके सेवक के पास में 8 मोहरे थी सोने की, सोचा जैसे इनके साथ में ले चलेंगे, इनकी हम सेवा करेंगे। उन्होंने उसको कह दिया था जी कुछ मत साथ में मत लेना, परमात्मा यदि चाहते हो सुख शांति कुछ मत लेना, ये काला मृत्यु है, यम है। किंतु वो माना नहीं, रुपया लेकर के वो सोने की स्वर्ण मोहरे लेकर के चला। रास्ते में भयानक जंगल, पर्वती जंगल, उसमें लुटेरे रहते थे, डकैत, उनके साथ में गणित जानने वाले भी लोग थे। उन्होंने कहा आज 2 पंछी आ रहे हैं, इनके साथ में कुछ माल है, बतला दिया। बस साथ ही साथ में कुछ आकाश मेघ, कुछ बूंदाबांदी हो रही थी, अंधकार भी, और रात का समय, और ये लालटेन लेकर के 2 डकैत उनको मार्गदर्शन करने के बहाने वहां पर पहुंचे, और बड़े प्यार के साथ में दोनों को मार्गदर्शन करते हुए वहां पर जहां पर उनका मुखिया था वहां पर ले आए और देखा जी जंगल के बीच में बहुत ही आलीशान रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, उनको अच्छी तरह से खिलवाने इत्यादि की जारी सारी व्यवस्थाएं होने की। सनातन गोस्वामी ने जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने सोचा जैसे बिना कारण के ही हमारा आदर क्यों कर रहे, कुछ जरूर इसमें मामला है। मैं कहा तुम्हारे पास में कुछ है तो जल्दी से निकाल करके मुझे दे दो, तो उसने एक रख लिया और साथ दे दिया, उन्होंने उसको सामने दे दिया। देते ही वो खिलखिला हंस उठा, बोले जी महाशय आज आपने हमारी बड़ी रक्षा की, आज आप दोनों को हम मारने वाले थे, मार करके ये ले लेते, हम जानते थे कि आपके पास में ये मोहरे हैं, किंतु आप बड़े बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं इसलिए दे दिया, इसलिए प्राण तो रक्षा आपकी हो गई। किंतु चुपके से उनके कान में कहा जो अभी एक असर थी उसके पास में और है। उन्होंने कहा जैसे आप क्या चाहिए आपको, आप हमको बिना विलंब के हमको इस पर्वत से और वन से आगे वृंदावन के रास्ते में वाराणसी के पास में हमको छोड़ दीजिए। बहुत खुश होकर के अपने आदमियों को देख करके वाराणसी के रास्ते में ने उस पार कर दिया। जब जंगल से बाहर आ गए तब तक सूर्योदय हो चुका था। उन्होंने अपने उस नौकर से कहा ईशान तेरे पास में और कुछ है? इन्होंने कहा जी हाँ महाराज एक और असर भी है। किस लिए रखा? जनता ने ये काला सांप है, कल रात में हम लोगों का प्राण इसी में चला जाता है, तुमको कहा था मैंने। अच्छा एक बात कर, इसको लेकर के तू घर चला जाए, ये परमार्थ का रास्ता नहीं, सुख और शांति का रास्ता नहीं है, तुम लेकर के लौट जाओ। साधु वही हो सकता है जो ऐसा हृदय जिनका हो। इसके बाद उसको लौटा दिया, हजार उतारा गया नहीं लिया। इसके बाद वहां पर पहुंचे वे महाप्रभु जी से इनकी भेंट हुई एक व्यक्ति के घर में, और भी बहुत सी इसमें बातें हैं, किंतु कुछ दो एक बातें इसमें से आप लोगों को बतलाता हूं जो आपके जीवन में शायद काम दे। वाराणसी में काशी में वहां पर जब पहुंचे कुछ शिष्टाचार के नाते बातें होने के बाद में गंगा स्नान किया और महाप्रभु जी की इच्छा से उन्होंने अपना मुंडन खौर काट करा करके स्नान करके जब उनके पास में आए तो सनातन गोस्वामी जी उनके पास में हाथ जोड़कर हुए प्राइम मिनिस्टर और बोले किसे? श्री चैतन्य महाप्रभु से हमारे दो एक प्रश्न हैं, इस प्रश्नों का आप उत्तर कृपा करके दीजिए। कहनो के आमी, ये बंगला में के आमी कह रहे मोरे जा रहे ताप या नहीं जानी के मने हित है। इसका तात्पर्य यह है सनातन गोस्वामी जी उस समय नाम नहीं हुआ था, उस समय उनका नाम था शक्कर मल्लिक, मुसलमानी नाम उनको दे दिया था शाकर मल्लिक। उन्होंने उनसे पूछा मैं कौन हूं और मेरी इच्छा करने पर भी संसार के सारे जीव प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सारे लोग सुख चाहते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो लोग व्यक्तिगत रूप में अकेले और सामूहिक रूप में सभी मिलकर स्त्री पुरुष बाल बच्चे समाज के लोग यहां तक कि समस्त राष्ट्रों के लोग राष्ट्र संघ कोई है चीज राष्ट्र संघ में मिलकर के कैसे हमारे दुख दूर हो और कैसे हम सुख और शांति पा सकें इसके लिए सम्मिलित चेष्टा भी करते हैं, कि आज तक यहां तक इतिहास रखा जाता है करोड़ों करोड़ वर्ष इस पृथ्वी को बनी हुई हो गई, इस जीवन में कोई भी सुखी और शांति नहीं रहा, इन संसारिक उपायों के द्वारा क्लेश और बढ़ता गया, क्लेश को दूर करने के लिए जितनी भी मरीज को दूर करने के लिए किया गया चेष्टा है वो और मर्ज अधिक बढ़ता चला गया, दुख दूर नहीं हुआ। अभी भी चेष्टा सामूहिक रूप में हो रही है, अमेरिका अगुआ बना हुआ है, किंतु कहां सुख और शांति है। तो कहते हैं सनातन गोस्वामी ने पूछा कि मैं कौन हूं और मेरी चेष्टा के हजार बावजूद भी दुख और क्लेश अवश्य संभावी है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसी कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, कोई प्राणी नहीं है जो ढलती ही उम्र को स्थिर कर दे, बुढ़ापा न आने दे। है कि रोगों को दूर कर दे, औरों की तो बात कर दे दूर, बहुत से आदमी मिल करके भी मन को स्थिर नहीं कर सकते। मानसिक क्लेश जिसको सब प्रकार की संपदाएं हैं, हिंदू जात जी को तो जानते होंगे जरूर, बंबई के रहने वाले,
इंग्लैंड के रहने वाले,
अच्छा अब तो वहीं डोमिसाइल हो गए। उनका एक लौता बेटा है 24 वर्ष का, छरहारा, बहुत सुंदर और सारी डिग्रियां भी ले चुका था, अब वही अपने पिता के बाद में मालिक होता है, एक ऑस्ट्रेलियन गन पर फिदा हो गया, किंतु उसने रिफ्यूज कर दिया, हम इसे इंडियन छरहारा, बहुत सुंदर और सारी डिग्रियां भी ले चुका था, अब वही अपने पिता के बाद में मालिक होता है, एक ऑस्ट्रेलियन गर्ल पर फिदा हो गया, किंतु उसने रिफ्यूज कर दिया, हम इसे इंडियन, इस काले से शादी नहीं करेंगे, और उसने विष खा करके अपने शरीर का अंत कर दिया। आप लोग शायद जानते होंगे, यदि पेपर में आया है पेट्रोल से जला लिया, या जैसे भी आत्महत्या कर ली। किस चीज की कमी थी? आधुनिक उपकरण की जरूरत थी, कमी थी न रुपए पैसे की, न बिजनेस की, या किस चीज की? किस चीज की? जो ऑस्ट्रेलियन गर्ल से शादी नहीं करेगा तो बस खत्म कर दिया। तो इस चीज को हम लोग नहीं समझते हैं क्या चीज है। पहली बनी हुई जीवन, जीवन है क्या चीज? इसलिए अभी हम जो देखते हैं कि मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, नहीं तो मरने के बाद में केवल प्राण चला जाए और ऐसे के ऐसे बैठे रहिए, फिर घर के लोग बातचीत करते नहीं है, आदर नहीं करते, और जला क्यों दिया जाता है? यदि मैं होता तो जलाने के बाद में हमको फांसी मिलती जो जलाता है, किंतु फांसी क्यों नहीं होती? रिपोर्ट भी तो एक नहीं लिखी जाती, जैसे इसने अपने पिताजी को जला दिया या कुछ कर दिया, अपनी मैया को जला दिया, स्त्री को जला दिया, पति को, क्यों? आखिर मैं कौन हूं? ये प्रश्न पूछा। नहीं जानते थे कि मैं सनातन हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, ये नहीं जानते थे। मैं गोरा हूं, लंबा हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, क्या नहीं जानते थे? जानते तो थे, इसलिए क्या मेरा करबद्ध आप लोगों से निवेदन है, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो विचार कीजिए मैं कौन हूं। और मैं ये गारंटी कहता हूं कि जब तक ये आप लोग नहीं जानेंगे, जीवन में कदापि सुखी नहीं हो सकेंगे, ये गारंटी है। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए? रुपया पैसा यदि प्राण दे देता तो अमेरिका और रशिया इसको एक चेटिया कर लेते, और किसी जगह ये चीज ही नहीं, विद्या ही नहीं होती। इसलिए पहले इस चीज को समझना चाहिए मैं कौन हूं। दूसरी बात, क्या करने से हम सुखी रह सकते हैं? हम समझते हैं अभी धोखे में हैं कि धन के द्वारा हम सुखी रह सकते हैं, किंतु धन, सौंदर्य, रूप और संसार का कोई भी चीज, अभी हाल में जो डायना मरी, किस लिए मरी बतला सकते हैं? किस लिए डायना मर गई? क्या उसको क्लेश था? क्या क्लेश था, किस लिए मरने का कारण क्या था, उसके पति की उपेक्षा अथवा क्या चीज थी, पति की उपेक्षा भी तो क्यों, संसार में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, किंतु हम देखते हैं आज साइंस ने इतनी उन्नति की है कि लोगों को चमत्कार हो जाता है, रसोई घर से लेकर शंस गृह तक एटम बम, नाइट्रोजन बम, इसके बाद भी और कुछ निकलेंगे, सब चीजें हैं। डिस्टेंस, दूरी को भी लोगों ने जीत लिया, अभी बैठे बैठे यहीं से कहीं इंग्लैंड में या कहीं पर भी क्रिकेट का तमाशा हो रहा है, अब देखेंगे सब प्लेयर कहां पर कैसे कैसे पोजीशन बदलते हुए, कैसे कैसे छकाते हुए ये सब चल रहे हैं। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति क्विंटल क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस पोज से बोल रहा है, किस स्वास्थ्य से बोल रहा है, यहां बैठे बैठे छवि अंकित होकर के आप देख सकते हैं। टाइम और डिस्टेंस को जगत इन लोगों ने, साइंटिस्टों ने जीत लिया है और पृथ्वी को मुट्ठी में रख लिया है। अभी यहाँ के जो घर के मालिक हैं, अभी दो दिन में जाएंगे जापान जाएंगे, कितनी दूरी में, कितने दिन में जाएंगे, कितने दिन लगेंगे, हम समझते कि बैठेंगे और देखेंगे जिससे सवेरे वहां पर पहुंच गए, इतना भी नहीं लगेगा। तो केवल यही नहीं, एक साथ में 400-500 आदमी बैठ करके और घंटों में पृथ्वी का चक्कर लगा लेंगे, इस तरह से पृथ्वी एक मुट्ठी हो गया है और सारा विश्व मन एक परिवार के अंतर्गत में, एक मुट्ठी के अंदर में आ गया है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। यही नहीं, एक आदमी का सिर खराब हो गया है, सड़ गया है कहीं, दूसरे का सिर लेकर के आप बदल सकते हैं। अभी मैंने कुछ 4-5 दिन पहले मैंने सुना कि एक लड़का किसी एक्सीडेंट में मारा गया, 16 या 20-25 वर्ष का, डॉक्टर ने उनके घर वालों को समझाया जी भैया इनकी आंखें दे दो और इनके ऑर्गन्स दे दो, हम दूसरे को हम जीवन दे देंगे। किसी प्रकार से घर वाले मान गए, आंखें दोनों निकाल ली और दो अंधों को, बड़े बड़े धनी आदमी थे, उनको लगा दिए, दोनों के आंख एकदम हो गए। किसी का किडनी, दोनों, किसी की एक खराब थी उसको लगा दिया वो ठीक हो गया, और किसी को ये दे दिया, किसी को हार्ट दे दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को काट करके उसकी नाली कहीं किसी को लगाया, किसी को कुछ, 50 आदमी को ठीक कर दिया। विज्ञान ने जरूर उन्नति की है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, तरह तरह से उन्नति की है। हमने पहले सुना था जैसे कोई आदमी का यहाँ पर गड़बड़ हो गया तब बंदर का सिर लेकर के वहां उसमें लगा दिया, बंदर का कोई ऑर्गन लगा दिया, कोई हार्ट में लगा दिया, ये सब तरह तरह की चीजें निकल रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं जो एक मिनट के अंदर में पृथ्वी को ध्वंस भी कर सकती हैं, इसमें सब तमाय। किंतु देखिए इसका एक बुरा नतीजा जरी विचार करके देखेंगे, आज हम इतने विनाश के कारागार पर उपस्थित हो गए हैं चोटी पर कि आज जरी आप देखिए पति और पत्नी में जो विश्वास था, पति पत्नी में पहले जैसा विश्वास नहीं, कुछ प्रेम सा दिखता है, वो काम है, वो स्नेह नहीं मोह है। पहले पति के लिए पत्नी अपना प्राण दे सकती थी और सचमुच में पति भी पत्नी के लिए प्राण दे सकता था, बेटों में परस्पर प्रीति रहती थी, बेटे बेटे में, भाई भाई में, माता और पिता में स्नेह रहता था स्वाभाविक, परिवार में 40-50 आदमियों के परिवार में अभी तक हमने भी देखा एक आदमी काम करता था और बड़े मजे के साथ में सभी लोग रहते थे,
ये बेटा का, उनका भाई का लड़का है, ये भतीजा का है, ये है, पहले उन लोगों का ध्यान रख करके अपने बेटे का, अपने पत्नी का ध्यान रखता था, बड़ा प्रेम था, स्नेह था परस्पर। आज इस विज्ञान ने जहां इतनी उन्नति की है, भौतिक उन्नति, वहां पर इन चीजें प्रेम को भुला दिया। आज जितना भी अच्छा सभ्य समाज हो, पति और पत्नी का बैंक बैलेंस कभी भी एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं। विशेष करके यहां पर भी भारत में कुछ अभी देखा जाएगा, पाश्चात्य देशों में तो एकदम नहीं, कुत्ते पर विश्वास है, पत्नी पर, भाई पर, पिता पर, माता पर, किसी पर विश्वास नहीं। आप जाएंगे, आप तो बहुत विदेशों में आप लोग घूम चुके हैं, मैं हॉलैंड में गया, अमेरिका में गया, बहुत बहुत देशों में गया, देखा एक एक आदमी के पास पांच पांच सात सात कुत्ते हैं और उसको लेकर के जा रहे हैं सवेरे टहलने के लिए, उनकी पत्नी साथ में नहीं है, उनका भैया साथ में नहीं, कोई फ्रेंड नहीं साथ में, बस कुत्ते साथ में है दो। मैंने पूछा भाई क्यों क्यों ऐसा क्यों? तो हम पत्नी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारी पत्नी का ये हमसे जो विवाह है, ये सातवां विवाह है। बच्चों का कोई ठीक ही नहीं, ये किसके बेटे हैं ये? आपके यहां तो अभी तभी है, कुछ कुछ विश्वास भी है, फिर तो अब धीरे धीरे ये उठता जा रहा है। आत्मा का जो गुण था, आत्मा के जो स्वाभाविक गुण क्या है? परोपकारिता, दीनता, माता पिता के प्रति सेवा, गुरुजनों के प्रति सेवा, दुखियों के प्रति एक स्वाभाविक रूप में सहानुभूति थी, चाहे अपना बेटा ना हो या दूसरे का हो, और यदि एक्सीडेंट हो गया तो झट उसको उठा करके अंततः अस्पताल में पहुंचाने का तो इतना तो कर ही सकते थे। आजकल ये सब चीजें चली गई, माता पिता वृद्ध हो गए, कोई सहानुभूति नहीं, ओल्ड हाउस में दे दो, अमेरिका में बहुत से ओल्ड हाउस, यहाँ पर क्यों नहीं बनते ओल्ड हाउस? यहाँ पर भी शायद आरंभ हो गए हैं माता पिता, अखबार दे रो, अखबार देते रहेंगे, नाती उनकी गोदी में आकर के खेलेगा, उसको कुछ सिखलाएंगे, ये भी अब नहीं रहा। वहां पर सुख और शांति कैसे संभव हो सकती है, इस पर विचार करेंगे। आंख बंद करके पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति को मत अपनाइए, चाहे स्त्रियां हो पुरुष। तो विज्ञान ने बहुत उन्नति किया, किंतु हमारे हृदय से, आत्मा से प्रेम निकल गया, अपरस्पर प्रीति, स्नेह, विश्वास, भाई भीतर में क्यों नहीं बैठता, इधर आओ। ये आत्मा की जो गुण है जिसमें हम सुखी हो सकते हैं, धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। आज हम ऐसे विनाश के कारागार पर पहुंचे हैं जिसको हम उन्नति समझते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, ये विनाश का कारागार है। आत्मा, आत्मा अजर अमर है, महाप्रभु जी ने बतलाया इस प्रश्न का उत्तर। जीवों का स्वरूप क्या है? हम भगवान के नित्य दास हैं, और सुख की पूंजीभूत एक वस्तु है, हमारा स्वरूप ही है सुखमय, आनंदमय। इसलिए आनंद की खोज कर रहे हैं, आनंद आनंद के लिए खोज करते हैं। आनंद कहीं इधर उधर नहीं है, आनंद तो है यही, किंतु आनंद की तरफ नहीं, हम विनाश की तरफ में चल रहे हैं, इसको भूल रहे हैं। हम फॉर्म करते हैं, जे घर से पेट नहीं भरता, फॉर्म में रहेंगे किस लिए? विदेशों में जाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, नाइट क्लब करते हैं, किस लिए? किंतु प्रेम तुम्हारे घर में है, आत्मसंयम के द्वारा उसकी थोड़ी सी चिंता करने से हम इसको पा सकते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते। गुरुजनों का आदर नहीं करते, उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। हम लोग भटकते हैं, जे क्या अपने ज्ञान की इस चीजों को कहां दें, नहीं मिलते हैं। आज मिलते हैं वही साधारण रूप में जीवन को निर्वाह करने वाले, संयम के साथ में रहने वाले, न अधिक धन है न खूब दरिद्र है, बीच के मध्यम कोटि के लोग जो है, जिनको सोचने का कुछ अवकाश है, बैठने के लिए दो मिनट का समय है, वो लोग तो सुन लेते हैं और वो अपने जीवन में सुखी भी होते हैं। इसलिए भारतवर्ष में अभी तक कुंठित रूप में भी भले ही न क्यों हो किंतु अभी तक है और सारा विश्व उसी के तरफ अभी नजर लगाए हुए है। आज मैं विश्व के बहुत से राष्ट्रों में गया और भी बहुत से राष्ट्रों में हमें बुला रहे हैं सुनने के लिए। हमारे पहले हम लोगों के शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी गए थे कहां कहां विश्व में, उन सब जगहों में हमें बुला रहे हैं, जाते हैं सुनते हैं। बड़े जैसे आप लोग अभी ध्यान से सुन रहे हैं ठीक वैसे सुनते हैं, एक दो की संख्या में नहीं हजारों की संख्या में आते हैं सुन सुन करके सब सुनते। हमारे भारतीय भी जो प्रवासी हैं वो लोग भी आते हैं और सुन करके कुछ अनुभव करते हैं। इधर में आप थोड़े से मुड़ रहे हैं, आज विश्व में सर्वत्र ही मुड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इसलिए सनातन गोस्वामी ने पूछा जे मैं कौन हूं, जानते थे जे मैं हूं, इसलिए मैं कौन हूं, ये शरीर ही मैं यदि हूं तो मरने के बाद भी शरीर रहता क्यों नहीं उसे प्यार करते। कोई राजा थे धनी आदमी मर गए, सभी लोग रो रहे हैं, उनके स्त्री पुत्र क्या है 12:30 बज गया, कितने बजे 12 बजे आरंभ किया और उसका हो तो मैं बंद कर दूं थोड़ा, संक्षेप नहीं करने की चेष्टा करूंगा, कुछ ना कुछ बतलाना चाहिए सुनना चाहिए। हम लोग के अनुभव और ज्ञान से आप लोगों को कुछ लाभ हो तब ये वैभव ही दुखमय नहीं रहेगा, सुख का कारण बन जाएगा। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी ने कहा हमारे अभी तीन प्रकार के शरीर हैं, वर्तमान में यह शरीर ऊपर जिसको पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है, मट्टी जल वायु आकाश पानी आग, छिटी जल पावक गगन शरीर। ये शरीर जो देख रहे हैं स्थूल है, ये हम नहीं है, इसके अंदर में एक और शरीर है जिसको मन कहते हैं, जैसे ये विचार करता है, शरीर विचार नहीं करता, शरीर रहने पर भी स्वस्थ रहने पर भी यदि किसी कारण से आपको कुछ खिला दिया जाए और आप पागल हो जाएं तो आपका मन देखिए ये स्वस्थ रूप से चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए शरीर से अलग एक मन है, वो भी एक शरीर है, उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसमें भी कुछ पार्थक्य है। मैं इसका विश्लेषण करने नहीं आया, इसमें तो बहुत समय लगेगा किंतु है, इसका विश्लेषण किया जा सकता है। उसके अंदर में दो चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा। अभी आत्मा कुछ अज्ञान पड़ा हुआ है और जो परमात्मा है परम आत्मा, समस्त आत्माओं में जो श्रेष्ठ आत्मा है, विश्व का संचालन करने पर भी सृष्टि स्थिति प्रलय करने पर भी एक है और प्रत्येक शरीर में एक एक आत्मा के साथ में साक्षी के रूप में है, कल्पना नहीं कर सकते। जैसे एक ही वायु प्रत्येक शरीर में है, एक ही आप अखंड रूप से रहते हुए भी बाहर में हम लोगों के शरीर में जठरारों के रूप में है, हजम इत्यादि कराती है। एक ही पानी का अखंड पानी और हम लोगों के शरीर में भी पानी, इन पांचों में से कोई एक चीज कमी हो जाए बस देखिए आदमी मर जाएगा। इसलिए ये शरीर हम नहीं है, पहले इस चीज को समझे। मरने के बाद में शरीर कितना भी जिसका भी हो, जवाहरलाल हो, चाहे उनकी लड़की इंदिरा गांधी हो, चाहे उनके दोनों पुत्र राजीव और कौन थे, क्या किया गया, फेंक दिया गया ना, जला दिया गया, संस्कार कर दिया गया या जैसा उनका हुआ। इसलिए शरीर हम नहीं है, इस चीज को पहले ठीक रखिए। यदि जीवन में सुखी और शांति रहना चाहते हैं तो इस चीज को भी समझिए, यह भी आपके जीवन का अपरिहार्य अंग है, इसको विचार करना। यदि आप नहीं विचार करते हैं तो मनुष्य नहीं गधे हैं, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं वो गधों में वह गधा जिसकी सिंह और पूंछ नहीं है, ऐसा जानवर शास्त्रों में ऐसा कौन कहा? व्यास जी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हमारे जितने भी पूर्व पुरुष हो गए वो कह रहे हैं। इसलिए मनुष्य होकर के ये विचार करना चाहिए, हम बढ़ते 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 बूढ़े होकर के मर के जाते हैं, सुख चाहते हैं किंतु सुख अंत में नहीं होता। अभी आप जो कह रहे हैं मैं कौन, मैं ये फॉर्म मेरा है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं अभी जापान इंग्लैंड अमेरिका साथ चारों में जाता हूं, एक मिनट की फुर्सत नहीं है। और काल यदि फुर्सत करा देगा तो क्या होगा? एक मिनट का समय नहीं देगा, आप परतंत्र हैं। इसलिए आप समझिए कि आप भगवान के अंश हैं। तो इस शरीर के अंदर में पहले ये शरीर, इसके बाद में मन बुद्धि अहंकार चित्त, और उसके अंदर में दो आत्मा और परमात्मा। उसमें परमात्मा तो सब समय ज्ञान स्वरूप सबको देख रहा है कि क्या कर रहा है, एक एक सेकंड का वो हिसाब रखता है, कोई नहीं रख सकता, कंप्यूटर भी नहीं रख सकता, बहुत उन्नत तरह का आधुनिक से आधुनिक भी कंप्यूटर नहीं रख सकता, किंतु वो हिसाब रखता है। कैसे? उसके बहुत से गुमास्ते हैं, गुमास्ता समझते हैं ना, क्या करते हैं, कर्मचारी हैं, क्या करते हैं, हवा उसका एक कर्मचारी है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हवा नहीं है, वो सबका हिसाब किताब लेता है। आकाश सर्वत्र है, आग सर्वत्र है, इसके द्वारा, और स्वयं साक्षी के रूप में बैठा हुआ सबका हिसाब लेता है, जब एक एक सेकंड में आप क्या करते हैं उसी के अनुसार आपके कर्मों के अनुसार में आपको कर्म का फल देता है। आप भोगने के लिए बाध्य हैं, अब नहीं जानते हैं कि इसके जन्म के बाद में हमारा क्या जन्म होगा, क्या दुख होगा, अभी कल क्या होगा ये नहीं जानते हैं, किंतु वो सब हिसाब रखता है। और जैसा करता है ना वजन करके, धर्म काटा, बेईमानों का काटा नहीं, जो थोड़ा सा इधर उधर कर दिया उसे वजन करके सब करेगा। हम लोग इसमें बहुत ही कम अच्छे कर्म करते हैं, किंतु जिसमें अच्छा और बुरा कर्म सबको हटा करके भगवान का भजन किया जाएगा, उनका अनुसंधान करेंगे, इसका जो हमें बतलाता है इस विषय में हमारा जीवन क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, आप बतला सकते हैं? समुद्र में जो निकट में रहने वाले हैं उनमें जो चलती है ना वो क्या लहरियां, एक के बाद एक के बाद, दिन रात कभी थकती नहीं, उसको कौन कंट्रोल करता है, सूर्य को कौन कंट्रोल करता है कि ठीक समय पर, मौसमों को कौन कंट्रोल कर रहा है, हम लोग के सुख दुख को कौन कंट्रोल करता है। आज एक राजा, आज एक राष्ट्रपति लेघारी कल थे, और दूसरे दिन सवेरे नहीं रहे राष्ट्रपति, कोई एक आदमी है अच्छी तरह से और फिर दूसरे दिन नहीं, क्यों? इस पर अच्छी तरह से विचार करके हमको देखना चाहिए। इसलिए जीवन में कैसे सुखी हो सकते हैं इसके संबंध में उन्होंने पूछा, और वो क्या बतलाएंगे हम पीछे बतलाते हैं। एक कीर्तन करो तो भाई, शरीर आत्मा नहीं है, हम नहीं है, आत्मा माने ही होता है मैं, आई, मन भी आत्मा नहीं है, मन के खुशी होने से भी मैं मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। मैं चाहता है गंदी चीजों को खाऊं और उसी में टेस्ट लगाता है, नाइट क्लब इत्यादि में आनंद उपभोग करना चाहता है, किंतु ये भी ठीक नहीं, इसे मन के चाहने से भी मन भी आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूं। उसके अंदर मैंने बताया कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और तो मैं नहीं संक्षेप में केवल यही बतलाना चाहता हूं, जब भी कभी समय रहेगा तब विश्लेषण करके बतलाने की चेष्टा करूंगा, तो अभी संक्षेप में यही बतलाता हूं। किसी समय में वाल्मीकि जी ने राम के जन्म के पहले ही उन्होंने जो उपलब्धि अपने जीवन में जो कुछ की उसी के अनुसार में वाल्मीकि रामायण बनाया। राम के जन्म राम का हो चुका था किंतु उनकी सारी लीलाएं नहीं हुई थी, तो उस समय में उन्होंने वाल्मीकि रामायण बनाई, उसमें 100,000 श्लोक थे, को लेने के लिए मनुष्य, देवता और दानव तीनों कुछ झगड़ने लगे, इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। उस समय में शंकर जी आए और बोले, मैं विवाह कर देता हूं आप लोगों में बराबर का, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। उसको तीन विवाह किए, उन श्लोकों में से तीन भाग किया गया 1,00,000 का, तो 33,000 हुए। तभी 1,000 बच गया, फिर तीनों को विभाग किया तो फिर भी 1 बच गया। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, एक एक चरण दे दिया। एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, तो 2-2 दे दिए, कितना बच गया? यही 2 अक्षर राम या कृष्ण है। तात्पर्य ये कहने का, समस्त हमारे जितने वैदिक वाङ्मय हैं, वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, रामायण, सबका सार भगवान का यह 2 नाम है, कृष्ण को हो या राम को, राम, ये 2 अक्षर हैं। यदि आप सतत पर रह करके कोई जानकार, विशेषज्ञ, गुरु, तत्वदर्शी, संसार से अनाशक्त तत्व को जानने वाले गुरु से इसी मंत्र को लेकर भगवान का नाम का मंत्र और अपने जीवन में अनुष्ठान कीजिए, कुछ ही दिनों के बाद में आपकी अनुभूति होगी जो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, और साजिए सारे दुखों को पार करके और सच्ची जो आनंद है उसको उपलब्धि कर सकेंगे, और इस जन्म के बाद में फिर दूसरा जन्म भी नहीं होगा भोग करने के लिए दुख कष्ट। इसलिए बतलाया गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अव केवल, भगवान की जितनी भी स्वरूप में शक्ति है जिसको हम अभी देख नहीं पाते हैं, सारी शक्तियां उस नाम में है। यहां तक कि भगवान के स्वरूप में जो जितनी कृपा नहीं है उतना उस नाम में शक्ति है। जैसे अभी आप कहिए सुअर, एक शब्द है, सुअर शब्द आपके उच्चारण करते ही आप देखेंगे एक एक जानवर टट्टी इत्यादि नहाता हुआ, गंदी जगह नहाता हुआ, इधर उधर में सुकरियों के साथ में, बच्चों के साथ में, सिर्फ तरह तरह की गंदी चीजें लेकर के नाली में बैठा हुआ या इधर उधर टहल रहा है, आ जाएगा। नाम एक ऐसी चीज है, भगवान का नाम, नाम लेते ही आपकी धारणा रहे और न रहे, आप शुद्ध रूप में करते हैं या नहीं करते हैं, उसका प्रभाव जरूर होगा। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपका बच्चा जो ये आग है और आपको देखकर के लपकता है और कोई वहां है नहीं और छोटा सा बच्चा आग की तरफ में गया और हाथ बढ़ाया, उसके अंगुलियां झुलस गई, ये आग का प्रभाव है। कोई जाने और न जाने, यदि पानी को स्पर्श करता है तो पानी उसमें लग जाएगा, भीग जाएगा। आग होगी या बिजली होगी तो रक्षा नहीं करेगी, बिजली को छूते ही बिजली अपना प्रभाव, चाहे जान कर कर करो अनजान में करो। उसी प्रकार से भगवान नाम, इनसे भी शक्तिशाली, विश्व ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाला नाम, आप जानबूझ कर कर करें न करें किंतु अपनी शक्ति जरूर उसका प्रभाव आएगा। जान करके करेंगे वो शुद्ध नाम होगा। तो ये बिजली है, आग है, ये प्राण रहित अचैतन्य चीज है, किंतु भगवान चेतन है, कृपालु है, इसलिए उसका प्रभाव जरा अधिक पड़ेगा। जानबूझ करके प्रीति के साथ में श्रद्धा से करेंगे तो उसका असर और अधिक होगा। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझिए, जगत में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक है जड़ और एक है चेतन। जड़ किसको कहते हैं? जिसमें नोइंग, विलिंग, फीलिंग न हो, जिसमें अनसुख दुख की अनुभूति और इच्छा न हो, वो क्या है?
जड़ है।
और जिसमें सुख दुख की अनुभूति है और इच्छा शक्ति है उसको कहते हैं चेतन। संसार में हम जो कुछ देखते हैं सही जड़ है, चेतन को आप नहीं देख सकते, ये आंखें चेतन को नहीं देख सकती। इसलिए जितने जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब जड़, ये शरीर जड़ है, ये कपड़ा जड़ है, शरीर है, आंख है, बाल है, केश है, जितने प्रकार के ये सब जो कुछ देख रहे हैं ये जड़ चीज है। और चेतन इसके अंदर में है, वो चेतन मैं हूं। भगवान नाम का प्रभाव उस आत्मा पर, चेतन पर पड़ता है, चाहे कोई जानबूझ कर ले और ना करे, उसका कल्याण करता है। संसार में सुखी होने के लिए जितने भी तरीके बतलाए गए हैं, जितने प्रकार के उपाय हैं, कोई कहते हैं दान है, जप है, यज्ञ है, गरीबों को दान इत्यादि करना, या जप है, तप है, यज्ञ करते हैं लोग, मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान करते हैं। आजकल विशेष करके दिल्ली में या बंबई में या और सब जगहों में देखते हैं कि जहां जाते हैं बहुत से लोग एकत्रित होकर के हो करके खूब जोर से एक साथ में हंसते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भले ही हंस नहीं रहे हैं, भीतर से आनंद नहीं आ रहा है, किंतु इमिटेशन रूप में हंसने की चेष्टा करते हैं। कोई योग क्रिया करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई रोग छोड़ाने के लिए कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किंतु ये स्वाभाविक चीजें नहीं है। इसे हम दुखों से या बुढ़ापा से, रोगों से या कष्ट से, या अभी जो मालिक हैं अब बूढ़े हो जाएंगे, अपने आप उनका वो शब्द छीन जाएगा, बच्चे ले लेंगे, नहीं लेंगे जोर करके ले लेंगे, ये सब दुख अपरिहार्य हैं। इन सब से यदि चाहते हैं तो भगवान का नाम कीजिए। जितने भी भगवान के नाम हैं उसमें बहुत पहले से ही लाखों वर्षों से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। किंतु इसमें एक बात है, आप लोगों ने सुना होगा बीज कोई चीज है, जैसे गेहूं का बीज, गेहूं का बीज है, पानी के साथ में लाएंगे ऐसे मत लाएंगे, पानी इत्यादि बीज से हुआ, पिता माता के आश्रय पर